ओम शांति। कल वाणी चल रही थी 9566 की पहले पेज के मध्य में, बात चल रही थी जब तुम बच्चे तमो प्रधान जास्ती बने तो दुख बहुत होता है, और जितना जितना तमो प्रधान बनते जावेंगे उतना दुख रूपी दुनिया बढ़ती जाएगी। मनुष्य हिरास में आए बहुत त्राहि त्राहि करेंगे, ये बात अगले कल्प के लिए बताई है या इसी कल्प के लिए बताई है? बहुत त्राहि त्राहि करेंगे हेरासमेंट में आकर के, फिर अंत में जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है तो फिर प्रैक्टिकल में जरूर देखना, यानी यज्ञ के आदि में साक्षात्कार और स्वप्न में विनाश की लीला देखी थी और अंत में प्रैक्टिकल में वो विनाश देखेंगे। माना झूठी चीज का साक्षात्कार नहीं होता, जो भी साक्षात्कार होते हैं वो सच्चे होते हैं। स्थापना की तारीख का साक्षात्कार तो हो नहीं सकता, वो तो चलती रहती है। स्थापना का साक्षात्कार बहुत बच्चों ने किया है, छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी, ज्ञान तो कुछ भी नहीं था। पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। तुम बच्चे जानते हो बाप ही आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, ऐसे नहीं आते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर तुम बच्चे स्वर्ग अपने आप स्थापन करते रहते हो, या ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने आप स्थापन करते रहते हैं? नहीं, मैं आकर के स्वर्ग का वर्षा देता हूं, परंतु फिर बच्चों को पुरुषार्थ भी करना है। ऐसे नहीं कि बाप आकर के वर्षा देते हैं तो पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं है, उच्च पद पाने का पुरुषार्थ जरूर करना है। तुम जानते हो 8-10 वर्ष में ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे, कौन सी सन की वाणी है? 66 की वाणी है। और उस समय बाबा शिव बाबा ने ब्रह्मा के मुख से ये वाक्य उच्चारण किया कि 8-10 वर्ष में ये दुनिया मिट्टी में मिल जाएगी। तो मिट्टी में मिल गई क्या है? ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। कौन सब मिट्टी में मिल जाएंगे? कौन मिल गए मिट्टी में? 76 की बात है, बताई कोई मिले मिट्टी में क्या? कौन है? एक आत्मा मिट्टी मिल गई है? अरे यहाँ तो मिट्टी में मिलने की बात है, यह सब मिट्टी में, एक आत्मा की बात नहीं, यह सब मिट्टी में मिल जाएंगे है? नहीं, ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया की बात बताई। ये ब्राह्मणों की संगमयुगी दुनिया जिसमें इतना देह अभिमान बढ़ा हुआ है कि ब्रह्मा बाबा जैसी सहनशील आत्मा को नहीं परख सके, उनकी सच्चाई को नहीं जान सके, और उनका भी हार्ट फेल कर दिया और किसी ने उंगली भी नहीं उठाई, तो बाबा कहते हैं ये सब देह अभिमानी सांढे हो गए हैं। देह को मिट्टी कहा जाता है। ये 8-10 साल रह गए हैं, इस 8-10 साल में ये सब देह अभिमानी की मिट्टी में मिल जाएंगे। कोई भी पक्का देह अभिमानी नहीं रहेगा, देही अभिमानी नहीं बचेगा। 8-10 वर्ष में ये देह अभिमानियों की दुनिया खलास होने वाली है। इसलिए मुसलमान कहते हैं कि जब विनाश होता है तब तक सारी दुनिया कब्र दाखिल होती रहती है। माना जो भी आत्माएं शरीर छोड़ती है उनका कहना है कब्र दाखिल हो जाते हैं, माने मिट्टी में मिल जाते हैं। अब वो बात नहीं है, मिट्टी में कोई आत्मा नहीं मिलती है, लेकिन जो आत्माएं देह अभिमानी हो जाती है उनको कहा जाता है देह अभिमान की मिट्टी में दब गए। तो ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया के लिए बताया कि ब्रह्मा के द्वारा जिन ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया को उस समय ज्ञान मिल रहा था, वो सतयुगी शूटिंग में तामसी स्टेज पाने के कारण, चौथी अवस्था में पहुंचने के कारण, संक्षेत्र में सारे के सारे देह अभिमान की मिट्टी में आ गए। अभी भीड़ पड़ी है, कर्जदारों की कर्जा बहुत भारी है, डरते भी हैं, समझते हैं कितना हमने पैसा दिया, सारा पैसा लड़ाई में ही खर्च कर दिया। फिर ये हमको मिलेगा कब? ऐसे ऐसे ख्यालात वो लोग करते रहते। तुम बच्चों को बाप बैठिए सब बातें समझाते हैं क्या कि अभी न कर्जा लेना है और न कर्जा देना है। कर्ज मर्ज कहा जाता है। वो थोड़े जानते हैं कि अभी बाकी थोड़ा समय है, कर्ज देने लेने की बात ही नहीं। बाप तो कहते हैं मैं तो दाता हूं, मैं किसी का लेकर के नहीं जाता हूं, मेरे अर्थ अर्थात ईश्वर के अर्थ जो भी देंगे मैं तुमको यहां का यहां भी वापस कर दूंगा, और 21 जन्मों के लिए इंटरेस्ट भी दे दूंगा। बाप कोई से लेकर के रखते नहीं है, मैं तो तुमको देने आया हूं। बाकी मनुष्य आपस में जो लेन देन करते हैं वो तो सब मिट्टी में मिल जाना। मनुष्य कहते हैं हे पतित पावन आओ, आओ क्यों कहते हैं? जरूर आकर के पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आवे और चले जावे फिर तुम अपने आप पुरुषार्थ करके पति से पावन बनते रहते हो। नहीं, मुझे आना पड़ता है, आकर के हमको पावन बनाओ कहते हैं ना। माना ऐसे नहीं है कि चले जाते हैं तो जाकर के पावन बन जाते हैं। बाप का चला जाना माना खेल खलास, सारी दुनिया पावन बन जाती है। एक भी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर पतित रूप में नहीं रह सकती, बाप सबको आकर के पावन बनाते, लेकिन आकर के पावन बनाते हैं, ऐसे नहीं कि मेरी अनुपस्थिति में तुम पावन बन जाते। बाप कहते हैं तुम बच्चे कितने बेसमझ बन पड़े हो, क्या بے ابھیمانی کی مٹی میں مل جائیں گے کا مطلب کیا ہوا؟ بے سمجھ ہوئے یا سمجھدار ہوئے؟ بے سمجھ ہوئے. ساری برہمنوں کی دنیا نے یہ سمجھ لیا کہ برہما کے تن میں باپ آیا اور چلا گیا. اب ہم اپنا پرشارتھ جتنا اتنا کرتے رہیں گے اتنے ہم پاون بنتے رہیں. باپ کہتے ہیں تم سب کتنے بے سمجھ بن گئے, پہلے تم کتنے سمجھدار تھے. جب سمجھدار تھے, ستو پردھان تھے, تو ساتوک پرشارتھ کرتے تھے. ابھی تو تمو پردھان بن پڑے ہو, تمہاری بدھی میں بھی اب آیا ہے. آگے تھوڑے ہی سمجھتے تھے کہ ہم وشو پر راجی کرتے تھے. تم وشو کے مالک تھے. یہ 66 میں برہما کے تن میں آ کر یہ بات کس سے بول رہے ہیں؟ تم وشو کے مالک تھے, یہ بات کس سے بولی گئی ہے؟ سامنے جو بیٹھے تھے ان سے, ایک طرف ان سے بول رہے تم مٹی میں مل جاویں گے, وہ ساری دنیا مٹی میں مل جاوے گی 8-10 ورس میں. تو جو سامنے بیٹھے وہ مٹی میں نہیں ملے. 66 میں جو بھی بابا کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ ساری برہمنوں کی دنیا مٹی میں نہیں مل گئی. اب مٹی میں مل گئی تو وشو کے مالک تم بن جاویں گے, یہ کیسے کہا؟ مانا بابا کوئی بچوں کو ایمرج کر کے بولتے ہیں. جن بچوں کو ایمرج کر کے بولا وہ بچے بابا کی تیسرے نیتر کی درشٹی کے سامنے ہیں اور ان کو کہا کہ تم وشو کے مالک بنیں گے. وشو کے مالک تھے اور پھر ضرور بنیں گے. ہسٹری جاگرافی ریپیٹ ہوگی کیا؟ یگی کے آج میں بھی تم وشو کے مالک تھے. جو بھی برہمنوں کی سرشتی رچی گئی اس میں تم مالک تھے. اور انت میں جو 8-10 ورس پورے ہونے والے ہیں اس میں جو نئی وشو کی سرشتی رچی جائے گی اس میں بھی تم مالک بنے گی. باپ نے سمجھایا 5000 ورس پہلے میں آیا تھا. ایسے کیوں کہتے باپ نے سمجھایا؟ ماں نے سمجھایا ایسے کیوں نہیں کہتے؟ ماں کے سمجھانے کی بات نہیں ہے. باپ مانا سپریم سول باپ جو رام باپ کی آتما میں آیا تھا اس نے یگی کے آدمی بھی سمجھایا تھا کہ 5000 ورس پہلے میں آیا تھا. ابھی بھی میں سمجھا رہا ہوں 8-10 ورس پڑے ہوئے ہیں. یہ دنیا خلاص ہونے والی ہے, تم وشو کے مالک بن جاویں گے. مانا یہ شوٹنگ پیریڈ میں جو ستیوگی ستو پردھان شوٹنگ سے لے کر کے تمو پردھان شوٹنگ 76 تک ہونے والی ہے وہ 5000 ورس کی جیسے آورتی ہونے والی ہے. جو نئی وشو بننی ہے اس میں تم مالک بنیں گے. ہسٹری جاگرافی اس طرح ریپیٹ ہوتی رہتی ہے. تم کو سورگ کا مالک بنایا تھا, پھر تم 84 جنموں کی سیڑھی اترتے ہو. تم اترتے ہو اور دھرم میں جو کنورٹ ہونے والی آتمائیں ہیں ان کو تو 84 جنم ملتے ہی نہیں. یہ وستار اور کوئی بھی شاستروں میں نہیں ہے. شیو بابا نے کوئی شاستر سے پڑھا ہے کیا؟ نہیں. ان کو تو گیان کی اتھارٹی کہا جاتا ہے. جو سوئم ہی گیان کی اتھارٹی ہے اس کو منشی گروہوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھنے کی کیا درکار ہے؟ वो लोग भी साथ साथ ही पढ़कर के शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। कौन लोग? वो गुरु लोग। कौन से गुरु लोग? बाहर की दुनिया के नहीं, ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो गुरु लोग हैं वो शास्त्र अर्थात कागज के पत्ते पढ़ पढ़ करके शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। जो बाबा ने बोला वो थी असली मुरली, उस मुरली को कागज में छपाई दिया गया, उसमें कुछ न कुछ अल्टरनेशन करेक्शन किया गया, वो ही पढ़ पढ़ करके शास्त्रों की अथॉरिटी कहे जाते हैं। उनको ज्ञान की अथॉरिटी नहीं कहा जा सकता। वो लोग समझ लेते हैं कि वो ज्ञान की अथॉरिटी है, वो भी गाते हैं पतित पावन आओ, गंगा स्नान करने के लिए भी जाते हैं, फिर गस्से मारते रहते हैं कि पाप आत्माएं स्नान करके नदियों के पानी को पतित बनाई देती है और हम उन नदियों में पांव डालते हैं तो नदियां पावन बन जाती हैं। ये बाहर की दुनिया की बात है, ये अंदर के ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। अंदर ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे सेवो हम कह के बैठे हुए हैं जो अपने डायरेक्शन पर चलाने लग पड़ते हैं नदियों को। समझते हम पतित पावन है, भगवान बाप तो आकर के वाणी चला करके चला गया, अब तुम हमारे डायरेक्शन पर चलो, हमारी बुद्धि के अनुसार चलो, जैसे हम बताएं वही ज्ञान की अथॉरिटी अपन को समझ लेते हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने बोला था पांडवों को गार्ड बन करके रहना है, शक्तियों का गाइड नहीं बनना है। अगर पांडव शक्तियों के गाइड बनेंगे तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ जाएगी, वो गड़बड़ आज पड़ी हुई है। तो वो सन्यासी कहते हैं, वो शास्त्रवादी से वो हम कहने वाले कहते हैं कि हम चरण डाल करके गंगा को पावन बनाए देते हैं। कौन से चरण? बुद्ध रूपी पांव। हम अपनी बुद्ध रूपी पांव से जो दखलंदाजी करते हैं उससे वो पावन बन जाती है। कितना झूठ बोलते हैं, उनकी बुद्धि के अनुसार चलने से तो और ही पतित बनेंगे या पावन बनेंगे। जैसे सारी दुनिया पतित है, पतितों के संग से पतित ही बनते हैं, नियम तो सबके लिए एक ही है। अब इन सबको सजा कौन देवे? जो नदियों के सामने पावन बन करके बैठ जाते हैं, सिबो हम कर कह के बैठ जाते हैं, नदियों के किनारे जाकर के बैठते हैं, पूजा करवाते रहते हैं, इनको कौन सजा देवे? सजा तो देनी पड़े, उन्होंने तो गृहस्थी मार्ग छोड़ दिया है मैंने, उनकी गृहस्थी नहीं है क्या? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में जो सन्यासी है उनकी गृहस्थी नहीं है क्या? वो तो कहते हैं हमारा बाप आया हुआ है, हम माँ बाप के बच्चे हैं, है? कहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में माँ बाप तो नहीं है। माँ बाप कहना अलग बात है और प्रैक्टिकल में माता पिता होना और उनकी प्रैक्टिकल मत पर चलना वो एक अलग बात हो जाती है। भक्ति मार्ग को उन्होंने तो छोड़ दिया, वो भक्ति भी नहीं करते सन्यासी लोग। सन्यासियों को भक्ति मार्ग में आना ही नहीं चाहिए, भक्ति मार्ग के कर्मकांड करना ही नहीं चाहिए, वो तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले। उनको शास्त्र आदि पढ़ने का भी हक नहीं है, उन्हें शास्त्रों से क्या लेने देना, उन्होंने तो दुनिया छोड़ दी। उन्हों की तो पहले जंगल में परवरिश होती थी, जब सतो प्रधान थे तब बिना मांगे सब कुछ उनको मिल जाता था जंगल में बैठे बैठे ही, क्योंकि प्योरिटी की पावर थी। कौन से सन्यासियों की बात हो रही है, है? हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया के सन्यासियों की बात हो रही है, जब 52 में बैठे हुए थे तो एकांत जंगल में रह करके तपस्या कर रहे थे, वहां ही उनको सब कुछ मिल जाता था। अभी तो शहरों में घुस पड़े हैं क्योंकि तमो प्रधान बन गए हैं, और अभी बड़े बड़े महल बनाते रहते हैं। क्या प्रूफ दिया, पहले सतो प्रधान थे तो जंगल में एकांत में रहते थे, और अभी तमो प्रधान बन गए हैं तो शहरों में घुस करके पब्लिक से पैसे मांग मांग करके बड़े बड़े कंक्रीट के महल माड़ियां बनाते रहते हैं। आगे तो स्त्रियों से घृणा करते थे, अब तो माइयां उनको गुरु बनाए उनके चरण धो करके पीती है। किसकी बात बताई, उनकी बात बताई जो ब्राह्मणों की दुनिया में शक्तियों को इस समय कंट्रोल कर रहे। पुरुषों की बात बताई या स्त्रियों की बात बताई, जरूर कोई पुरुष वर्ग में से है जो न समझने वाली माताएं हैं, वो उन पुरुष गुरुओं की पूजा करती रहती है, चरण धो करके पीती है। कितना अंधेर है, पाप कहते हैं। अब उन्हों को सजा देने का टाइम आ गया, मैं अच्छी रीति सजा दूंगा। क्या सजा देंगे, बबूल के डंडे चलाएंगे क्या? बेहद का बाप है तो बेहद की सजा देता है, भक्ति मार्ग में तो समझ लिया है बाण चलाए, बाणों से घायल किया, कोई लोहे के बाण होंगे नहीं, यहां तो ज्ञान के डंडे हैं, ज्ञान के बाण है। मुरली वही है, वही मुरली जब ब्रह्मा के मुख से बोली जा रही थी बहुत मीठी तान लगती थी, और वही मुरली जो तमो प्रधान हो गए, तमो प्रधान सांढे बन गए, देह अभिमानी की मिट्टी में मिल गए, तो संक्षेत्र में वही मुरली ऐसा रूप धारण करती है कि उनको नगाड़े के समान तीखी आवाज वाली लगती है, गड़गड़ाहट वाली लगती है। वो राम के बाण लगते हैं, कहते हैं ना, ये तो ऐसे बोलता है जैसे बाण मारता हो, इसकी वाणी तो ऐसे है जैसे घायल कर देती है। तो किनको घायल करती है और किनको मीठी लगती है? जो बच्चे आत्माभिमानी बने उनको मीठी लगती है। इसलिए मुरली में बोला था, आत्मा रुकी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। तो संक्षेत्र के बाद जिन बच्चों ने डायरेक्ट बाप से सीखना शुरू किया उनको वही मुरली मीठी लग रही है, मुरली अनुभव होती है। और जो देहाभिमानी सांडे बन गए उनको वो तीखे तीखे बाण अनुभव हो रहे। बाप कहते हैं मैं उनको अच्छी रीति सजा दूंगा। एक तरफ परमात्मा नाम रूप से न्यारा कहते हैं, फिर खुद को इसे वो हम कह के बैठ जाते। जब नाम रूप से न्यारा है तो अपन को भगवान समझ करके क्यों बैठ गए? उनों का तो नाम रूप सब होता है, किनों का? परमात्मा बाप का। फिर भी कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारा होगा तो गीता ज्ञान कैसे सुनावेगा? पतितों को पावन कैसे बनावेगा? जो पावन देवताएं थे वो कलयुग के अंत में आते आते पतित कैसे बन गए? संग के रंग में आने से पतित बन गए। अनेकों के संग के रंग में आकर के दुनिया पतित बनी। तो एक सुप्रीम सोल बाप जो अभोक्ता है, अकर्ता है, सदाशिव है, वो जब इस सृष्टि पर साकार में आता है तो उसके संग के रंग से सारी दुनिया पतित से पावन बनती है। एक के तारे सब तर जाते हैं, अनेकों से दुनिया का पतन हुआ है। अभी देखो कितना अंधेर है। बाप बैठ समझाते हैं, ऐसे भी नहीं कहते हैं कि भक्ति करो, ज्ञान की बातें समझाते हैं। भक्ति करने के लिए नहीं बोलते, और जो भक्ति करते हैं उनको ना भी नहीं कहते। क्यों? जो भक्ति कर रहा है, जिसकी भक्ति में श्रद्धा है, अगर उसको भक्ति करने के लिए ना करेंगे तो न वो ज्ञान उठाएगा और न उसकी भक्ति पूरी होगी। इसलिए भक्ति करने के लिए किसी को कहना भी नहीं है, और जो भक्ति कर रहे हैं उनको ना भी इनकार भी नहीं करना है। बाप बैठ समझाते हैं, कि किसी में भक्ति भी न हो और ज्ञान भी न हो तो बेचारे दोनों जहान से चले जाएंगे। भक्ति मार्ग से भी गए और ज्ञान मार्ग से भी गए, नास्तिक बन जाएंगे। तुम कहते हो जो बाप को नहीं जानते वो नास्तिक है। वो लोग कहते ये तो भक्ति नहीं करते इसलिए नास्तिक है। भक्ति में तो अंधश्रद्धा सिखाई जाती है। बाप आकर के अंधश्रद्धा नहीं सिखाते। बाप तो कहते हैं तुम भक्ति के कर्मकांड भल मत करो, करने की दरकार नहीं है, सिर्फ मैं जैसे चलाना चाहता हूँ वैसे चलो, ज्ञान की बातों को सुनो, दूसरों को सुनाओ, खुद आचरण करो और दूसरों को आचरण कराओ। जो बाप को नहीं जानते हैं, बाप की रचना को नहीं जानते हैं, वो नास्तिक है। नित्य संबंधी बिरादरी वाले सब कहेंगे ये तो नास्तिक बन गए हैं, क्योंकि भक्ति के कर्म कांड आदि नहीं करते, न ये शास्त्रों को मानते हैं, न ये किसी गुरु को मानते हैं, ऐसे ऐसे कहते रहते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि वास्तव में सृष्टि का सदगति दाता कौन है। इस सारी सृष्टि की सदगति करने वाला सिर्फ एक है। वो एक निराकार जरूर कहा जाता है, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی نام روپ کا کال آدی نہیں ہے، وہ ضرور اس سستی پر آتا ہے، اور جہاں سے پرتکشتا روپی جنم لیتا ہے وہ دھرنی بہت پرسدھ ہے۔ اتر بھارت میں بھگوان کی جنم بھومی مانی جاتی ہے، وہ یادگار بنی ہوئی ہے، ایسے نہیں کہ متھرا میں جنم لیا، صرف یادگار قائم ہے، ایسے نہیں ہے ایودھیا میں جنم لیا، یہ تو یادگاریں بنائی ہوئی۔ ایشور جو سبھی آتماؤں کا باپ ہے وہ کوئی گرب سے جنم نہیں لیتا، استول گرب سے اگر جنم لیتا ہو تو اس کی یادگار قائم رہے، یہ تو دواپر یوگ سے ہی بنا بیٹھ کر کے بنائے ہیں۔ ایودھیا دھام، متھرا دھام، ورنداون دھام، کاشی آدی، یہ بھگوان کے استھان مانے جاتے ہیں۔ وارانسی میں جسے بنارس کہتے ہیں وہ شیو شنکر بھولے ناتھ کا استھان مانتے ہیں، جہاں گیان کا رس بنا اس کا نام رکھ دیا بنارس، بنا بنایا رس ملتا ہے، کوئی بنانے کرنے کی بات نہیں ہے، بھگوان ہی آ کر کے وہ گیان رس دیتے ہیں۔ متھرا مت متھنے کو کہتے ہیں، مت جیسے دہی کو بلویا جاتا ہے تو کہتے ہیں مت، تو یہ دیوان کو بلونے کی بات ہے، یہ دیوان جب بلویا جاتا ہے تو مکھن الگ ہو جاتا ہے، بدھی جو ہے وہ سوتہ ہی چلنے لگ پڑتی ہے، یہ سنگ کے رنگ کا رہسیہ ہے، شیشت کا سنگ کریں گے تو شیشت استھتی بنے گی، کوئی بھرشت منشیا آتما کا سنگ کریں گے تو بھرشت استھتی بنے گی۔ اس سرشتی پر پرماتما باپ آ کر کے اونچتے اونچے پارٹ بجاتا ہے، جس منشی تن میں پرویش کرتا ہے مقرر روپ سے وہ ہیرو پارٹ دھاری کہا جاتا ہے۔ اب ہیرو پارٹ دھاری کی جو سمپرک سنسرگ میں آویں گے، سمبندھ میں آویں گے، وہ تو ضرور اونچا آتما ٹھہری، کیونکہ سنگ کا رنگ لگتا ہے، سنگ تارے کو سنگ بوری کہا جاتا ہے، جیسے ان دوش کام کرتا ہے ایسے ہی سنگ دوش بھی کام کرتا ہے۔ تو باپ کہتے ہیں میں تم کو پاون بناتا ہوں، ساری دنیا کے سنگ کے رنگ سے تم پتت بنتے ہو، اس لیے میں آ کر کے کہتا ہوں صرف میرے کو یاد کرو اور کوئی کے ساتھ بدھی کا یوگ نہ لگاؤ۔ ان کو تو یہ پتا نہیں ہے کہ باپ ہی آ کر کے پتی سے پاون بناتے ہیں، دنیا میں تو الٹا ہی دھندا لگا پڑا ہے، کلیوگ انت میں باپ بھی بچی کو پتت بنا دیتے ہیں، گرو بھی اپنے چیلوں کو پتت بناتے ہیں، ٹیچر نہیں بناتے، وہ تو پڑھاتے ہیں۔ یہ باپ بھی کہتے ہیں میں تمہارا ٹیچر ہوں، میں تو تم کو پڑھائی پڑھاتا ہوں، سمجھاتا ہوں، کون سی پڑھائی پڑھاتا ہے، कौन सी बात का टीचर है? जो गीता सुनाई, जो ब्रह्मा के मुख से गीत गाया, उस गीता अर्थात उस कविता का ही अर्थ बैठ करके मैं तुमको समझाता हूँ। टीचर का काम होता है जो भी टेक्स्ट बुक होती है उस टेक्स्ट बुक को समझाना, क्लैरिफिकेशन देना, हिज्जे हिज्जे करके समझाना, तो वो टीचर का कार्य मैं करता हूँ। मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और अंत में सदगुरु भी बनता हूँ, सदगति करता हूँ। काय की सदगति पहले होती है, शरीर की सदगति पहले होती है या मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति होती है? पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा निर्मल बनती है, इसके लिए चाहिए ईश्वर का ज्ञान। ज्ञान को जल कहा जाता है, जैसे स्थूल जल से स्थूल कपड़े धोए जाते हैं, मैल माटी साफ कर देता है, ऐसे ये ज्ञान जल है आत्मा के लिए। ये शुद्ध ज्ञान जल चाहिए, इसमें मनुष्य मत की मिसेटी नहीं होनी चाहिए। मुरलियां हैं, भगवान के मुख से बजाई गई मुरली है, अगर उसमें किसी प्रकार की मिसेटी हो गई, उसमें कुछ मनमत मिक्स कर दी या वाणी की कटिंग कर दी, तो वो मुरली घातक भी हो सकती है, उल्टा असर दिखा सकती है, क्योंकि मिक्सरिटी हो गई। जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा है और उसमें दो चार बूंद सर्प का विष डाल दिया जाए तो सारा ही क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। तो बाप भी कहते हैं एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से सुनेंगे तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। जब ज्ञान ही बेविचारी हो जाएगा तो सुनने वाले भी बेविचारी बनेंगे। अनेक मत से बनता है रावण राज्य, इसलिए रावण को 10 सिर दिखाते हैं, और एक मत से बनता है राम राज्य, इसलिए राम को एक सर दिखाते हैं। अनेक मनुष्य गुरुओं की मत से दुर्गति, और एक सदगुरु निराकार की स्टेज में रहने वाले सदगुरु से सदगति। इसलिए घर घर में ये स्लोगन टंगा हुआ होना चाहिए, क्या? श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से दुर्गति। तो बताया, ये बाप कहते हैं मैं टीचर हूँ, तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, ऐसे नहीं हम पर कृपा कर दो। स्कूल में कोई टीचर से कहता है? कोई बच्चे कहते हैं ये टीचर हम पर कृपा कर दो? कृपा की बात ही नहीं। जो जितनी पढ़ाई ध्यान से पढ़ेगा महत्व तो देगा तो अच्छे नंबरों से पास होगा। मैं तो टीचर हूँ, तुम मेरे से कृपा आदि क्या मांगते रहते हो? कृपा आदि की सिस्टम तो गुरुओं से पड़ी है, कृपा दृष्टि दे दो। बाप कहते हैं तुम बच्चे जितनी सेवा करते हो ईश्वरीय सेवा से तुमको खुशी का मेवा स्वतः ही मिलता है, क्योंकि बाप सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं। जो डिससर्विस करने वाले बच्चे हैं उनको याद नहीं करते। तो तुम जितनी ईश्वरीय सेवा करोगे उतना तुम्हारे ऊपर स्वतः ही कृपा दृष्टि बरसती रहेगी। ये स्थूल आंखों की कृपा दृष्टि की बात नहीं है, स्थूल आंखों से देखी हुई चीज सिर्फ याद आती है, ऐसे नहीं कि कृपा दृष्टि बरस जाती है। ऐसे तो बाप सबको ही देखते रहते हैं, तो देखने मात्र से क्या सदगति हो जाएगी? नहीं, जो ज्ञान की बातों को समझ करके अपने जीवन में धारण करके दूसरों को धारण कराते हैं उससे सदगति हो सकती है। दूसरों की सेवा करेंगे तो सेवा का मेवा खुशी मिलेगी। संगमयुग में खुशी बहुत बड़ा वरदान है। इस संगमयुग की शूटिंग के पीरियड में जो जितना खुश रहता है वो जन्म जन्मांतर का सुख भोगेगा, और भगवान बाप के आने पर भी जो दुखी रहता है संगमयुग में दुख का अनुभव करता है वो जन्म जन्मांतर दुखी परेशानी का अनुभव करेगा। 21 जन्म का तो वर्षा मिलता ही मिलता है, उसमें कोई तड़ाप नहीं होती, लेकिन जब द्वापर युग आता है, दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, अपनी अपनी मत देने लग पड़ते हैं, तो उनके प्रभाव में आने से मनुष्य आत्मा दुखी होने लग पड़ती है। तो अभी शूटिंग हो रही है, चाहे जन्म जन्मांतर का सुख का भंडार बढ़ा लो और चाहे दुख का भंडार बढ़ा लो, तीन धाम है, सुख धाम, शांति धाम और दुख धाम। कोई आत्माएं जन्म जन्मांतर शांति धाम का अनुभव करने वाली बनती है, कोई आत्माएं जन्म जन्मांतर सुखधाम का अनुभव करने वाली बनती है, और कोई आत्माएं ऐसी भी ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में है जो दुखधाम का अनुभव करती है, जो दुखधाम का अनुभव करती है वो जरूर उनकी नजरों के सामने कौन रहता होगा। कौन रहता होगा? दुख देने वाले का संग किया होगा ना। जो कमजोर होता है वो दुखी होता है, और जो पावरफुल होता है वो सुखी रहता है। कमजोर कैसे बनता है? कोई भी आत्मा की कमजोरी का कारण क्या होता है? कमजोरी का कारण है अनेकों का संग का रंग। एक को याद करने से पावरफुल बनती है आत्मा। जो एक ऊंचे से ऊंचा है उस एक ऊंचे से ऊंचे को अगर पहचान लिया तो पावर का पारावार नहीं रहेगा, और अनेकों का संग करने से विचार बढ़ता है, विचार बढ़ने से कमजोरी आती है, और जहां कमजोरी होगी वहां दुख अनुभव होगा। तीन मूर्तियों में से एक मूर्ति की पूजा क्यों नहीं होती? मंदिर क्यों नहीं बनते? कारण कोई होगा ना, क्या कारण है? उनका नाम ही है ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी और माँ बड़ी थी, बड़ी माँ क्या गलती कर देती है? माँ बच्चों के मोह में आकर के बाप का भी तिरस्कार कर देती है, बाप के कंट्रोल से भी बाहर हो जाती है, तो माँ दुखी होती है। ऐसी दुनिया बनाने के निमित्त बन पड़ती है जहां मां को वर्षा ही नहीं मिलता। ये तो अभी बाप आए हैं तो ईश्वरी गवर्नमेंट में ने भी ये नियम बना दिया है कि माता को भी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं तो पिछले 2500 वर्ष की ये हिस्ट्री बताती है मां मां बनती है, बच्चे को 9 महीने पेट में पालन करती है, परवरिश करती है, बच्चा बड़ा हो जाता है उसका सहन करती रहती है, माँ बाप के कंट्रोल में रहती है तब भी सहन करती है, पति के कंट्रोल में रहती है तब भी सहन करती है, और पति खुदा न खास्ता चला जावे शरीर छोड़ देवे तो बच्चों के कंट्रोल में रह करके दुखी होती है। एक जन्म में स्त्री बन करके माता बनना पड़ता है और एक जन्म में पुरुष बन के पिता बनना होता है। एक ही आत्मा स्त्री भी बनती है, एक ही आत्मा पुरुष भी बनती है। कोई आत्मा ऐसा पुरुषार्थ करती है कि ज्यादा जन्मों में पुरुष चोला धारण करती है, और कोई आत्मा ऐसा पुरुषार्थ करती है कमजोर कि ज्यादा जन्मों में स्त्री चोला धारण करती है। क्योंकि मुरली में बोला है एक जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष का तो मिलता है, ये तो 21 जन्म चलता है, वहां कोई बैलेंस बिगड़ता नहीं पाप पुण्य का, लेकिन बाकी जो 63 जन्म है उनमें बैलेंस बिगड़ जाता है। बैलेंस बिगड़ने के कारण कोई कोई आत्मा दो जन्म पुरुष के भी ले सकती है और दो जन्म लगातार स्त्री के भी ले सकती है। तो ये हिसाब बन जाता है। इसलिए रोना रोने की बात नहीं है कि मैंने स्त्री चोला क्यों लिया, बल्कि बाप तो कहते हैं स्त्री चोला लिया तो बहुत अच्छे, क्योंकि बाप की छत्र छाया विशेष किसको मिली हुई है, कन्याओं माताओं को विशेष छत्र छाया मिली हुई है। कन्याओं माताओं को सरेंडर किया जाता है, भाइयों को सरेंडर नहीं किया जाता, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी पार्शलिटी है, पक्षपात है। भगवान भी आकर के पक्षपात करता है, पक्षपात नहीं है। ये दुनिया ऐसी बन गई है जहाँ कन्याओं माताओं को शरण कोई दे नहीं पाता, ऐसी जिससे उनकी सुरक्षा हो पाए, बाप ही आकर के उनको सुरक्षा देते हैं। और कन्याओं माताओं को ही आज की पतित दुनिया में सुरक्षा की जरूरत है, पुरुषों को सुरक्षा की क्या जरूरत। इसलिए शास्त्रों में बैल पाल कन्हैया गाया हुआ है या गऊ पाल गाया हुआ है, गऊ पाल कन्हैया गाया हुआ है। क्यों गाया हुआ है कि गऊ उसको कहा जाता है जो गऊ स्वभाव का हो। स्वभाव संस्कार ही भारत की कन्याओं माताओं का ऐसा है, उनको सारा जीवन जिस खूंटे से बांध दिया जाता है, सारा जीवन उस खूंटे से चुपचाप बंद करके अपना जीवन बिताती है। ये भारत की कन्याओं माताओं की कथा है, इसलिए कथाओं में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि धरणी माता पर जब पाप का बोझा बहुत बढ़ गया तो उस धरणी माता की सुरक्षा करने के लिए भगवान को आना पड़ता है। भगवान भगवान का रूप धारण करके आता है, कन्याओं माताओं की सुरक्षा करता है। इसलिए संगम युग में, खास करके वर्तमान संगम युग में स्त्री चोला लेना ये तो भाग्य की बात है। चाहे वो माताएं बांधे ली हो, चाहे वो माताएं निर्बंधन हो, और चाहे वो कन्या हो। कन्या है तो और ही अच्छा, पवित्र होती है, निर्बंधन होती है। माताओं को तो बंधन में बंधना पक्का हो गया, क्योंकि शादी की है, जिसके साथ शादी का कंगन बांधा है उसके अंडर में चलना पड़े। लेकिन बाप कहते हैं कोई बात नहीं, मन को तो कोई नहीं बांध सकता, और मनसा सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, मनसा के द्वारा ही सृष्टि परिवर्तन होगी। तन से भागदौड़ की जाती है, वाचा से भाषण किया जाता है। अभी तक ब्राह्मणों की दुनिया में कितनी भागदौड़ हुई, कितनी भाषणबाजी हुई, भारत का और दुनिया का परिवर्तन कितना हुआ। इसलिए बोला कि मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। क्या जब हर तरीके से थक जावेंगे, तन से भी थकान हो जाएगी, वाचा से भी थकान हो जाएगी, तो एक मन ही आसरा रह जाता है। और मन जब एक को पकड़ लेता है, एक की पावर को पहचान लेता है, تو اس یاد میں مست ہو جاتا ہے, اور وہ یاد اب بھی بیچاری یاد ہونی چاہیے جو کمال کر کے دکھاوے گی. جو بہت دکھی ہوتا ہے وہ بہت یاد کرتا ہے, کہتے بھی یہ دکھ میں سمرن سب کرے سکھ میں کرے نا کوئی. جو پاور فل ہوتا ہے اس کو کسی کا آدھار لینے کی درکار نہیں, اور جو کلیوگ کے انت میں آ کر کے ابلا کہا جاتا ہے, کنیائی ماتا ہی ابلا کہی جاتی, تو ان کو بھگوان آ کر کے شیلٹر دیتا ہے, شرن دیتا ہے, گووردھن پہاڑ گایا ہوئے ہے شاستروں میں, جو بھی نام ہے کام کے آدھار پر ہے. گو مانا کنیائی ماتا ہے, انہوں نے تو جانور گوؤں کو سمجھ لیا ہے کہ بھگوان نے آ کر کے جانور گوؤں کو چرایا. نہیں, یہ بھارت کی کنیائی ماتائیں ہی گوؤں کے موافق ہیں. ان کنیائی ماتاؤں کو اکٹھا کر کے ایک پہاڑ جیسا بنا لیا, پاپوں کا پہاڑ ان کے سر پر چڑھا ہوا ہے. جنم جنمانتر کی دکھی ماتائیں کنیائیں ان کو آ کر کے بھگوان سنگٹھت کرتا ہے, اور جب وہ سنگٹھت ہو جاتی ہے تب وہ شیو شکتیاں کہی جاتی ہیں. شیو شکتیوں کی من کی آواز ساری دنیا کو پریورتن کرتی ہے, ساری دنیا کو ہی نہیں, یہ جو پرکرتی کے پانچ تتو ہیں جو گیان نہیں سن سکتے, ان پانچ تتوں کی بدھی میں گیان نہیں بیٹھتا ہے, وہ بھی پریورتت ہو جاتے. جو گیان سنتا ہے وہ تو گیان سے پریورتت ہو سکتا ہے, لیکن جو جڑتموئی بدھی والے ہیں, پرکرتی کا پوشن کرنے والے ہیں, وہ کیسے پریورتت ہوں گے؟ ان کے پریورتن کے لیے منسا کی پاور چاہیے, وائبریشن چاہیے. وہ وائبریشن کنیائی ماتائیں سنگٹھت ہو کر کے دے سکتی. پرش تو اپنے چولے سے تنگ ہیں, ان کو تو ٹائٹل دے دیا پرش سارے ہی دریودھن دشاسن, ایکانت پائے کر کے اپنی کرنی سے چوکتے نہیں ہیں. کنیائی ماتائیں چاہیں تو سورگ کی گیٹ کھول سکتی ہے, سکھدھام کا گیٹ کھول سکتی ہے, اور کھولیں گی. اس لیے ماتا گرو گایا جاتا ہے, مرلی میں بھی بولا ہے ماتا گرو بغیر ادھار ہو نہ سکے. سب سے بڑی ماتا ہے پرکرتی ماتا, پرش اور پرکرتی کا ہی سارا کھیل ہے. جو پرشوں میں پرم پرش ہے اور پرکرتی کے پانچ تتوں میں جو سنگاتمئی مہاجننی ہے, وہی کلیوگ کے انت میں آ کر کے پلیوٹ ہو جاتی ہے, جس کا نام رکھا گیا ہے گیان میں گیتا. گیتا ماتا پوری کھنڈت کی ہوئی ہے, اس کو دوسرے شبدوں میں کہا گیا ہے راون کی جیل میں ہے. تو رام کا گھر کیسے بنے گا؟ سیتا کہو, گیتا ماتا کہو, بات تو ایک ہی ہے, وہی راون کی جیل میں ہے. تو ایودھیا میں وہ رام جنم بھومی میں رام کا مندر بنانا چاہتے ہیں. مندر کہو, گھر کہو, گھر گھر کی دھریتری بنائے گی, ये आदि की सम प्रधान दुनिया के मनुष्य बनाएंगे। घर बनाने वाला कौन होता है, बिगाड़ने वाला कौन होता है? घर की धरणी के लिए कहते हैं घर की धरणी अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर की धरणी अगर बिगड़ी हुई हो तो घर नरक बन जाए। ये सारी सृष्टि हमारा कुटुंब है, कुटुंब नरक भी बनता है। जब वो महाकाली का रूप धारण करती है तो खून खराबा ही खून खराबा सारी सृष्टि पर हो जाता है। जितने भी आसुरी संस्कार हैं वो सब मिट जाते हैं, शेष छात्राएं बची रहती है। उनको कहा जाता है सूर्यवंशी, पावन आत्माएं, जो नई सृष्टि में नया जन्म लेकर के विश्व का संचालन करती। अभी वो दुनिया आने वाली। बाप कहते हैं अभी इस अंतिम जन्म में ऐसा पुरुषार्थ करना है जिससे कोई ऐसा संघ का रंग न लगे जो हम फिर से पीछे की ओर चले जाए, हम उल्टी सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। कलयुग से सतयुग में जाना है तो हमारे वाइब्रेशन ऊंचे उठने चाहिए। घड़ी घड़ी मन को चेक करना है, दृष्टि को चेक करना है कि हमारी दृष्टि और वृत्ति पतित बन रही है या पावन बन रही है। हमारे स्वप्न सात्विक स्वप्न है या तामसी बन रहे हैं। ऐसे तो स्वप्न आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि समय की वैल्यू का अगर पता है तो 4-5 घंटे की सॉलिड नींद होनी चाहिए, स्वप्न होना ही नहीं चाहिए। व्यर्थ संकल्प आते हैं तो व्यर्थ स्वप्न भी आते, समर्थ संकल्प आवेंगे तो स्वप्न भी अच्छे अच्छे आवेंगे, और निराकारी स्टेज बनेगी तो निर्विकारी आत्मा निरहंकारीपने का अनुभव भी करेगी और दूसरों को भी कराएगी, फिर स्वप्न आना बंद हो जाएगा। ओम शांति।